महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 4 ओम नमः सिद्धे प्रणीतं तं बन्धतत्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबन्धं नमामि। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें चौथी पुस्तक में तीसरा अंगभाग बंध अधिकार चल रहा है। अभी माये पृष्ठ संख्या 18 पर 18 यहाँ अपनी स्वामित्व की प्ररूपना चल रही है। और अभी हम जघन्य की बात, जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो हमने ओघ में देखा था। अब यहाँ आदेश यानी नरक गति आदि में देखेंगे। ओघ में क्या देखा था हमने, कल प्रारंभ हुआ था अपनी बात के जो धाती यानी ज्ञानावन दर्शन अंतराय के जघन्य अनुभाग का स्वामी कौन है, तो क्षपक सूक्ष्म सांप्रदाय अंतिम अनुभाग बंध में स्थित वाला मोनिय का क्षपक अनिवृत्तिकरण अंत में, वेदिनी और नाम कर्म के जघन्य का तो कोई भी समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला लिया नाम पर वेदिनी का। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन, तो हमने देखा था जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, हाँ उसका अर्थ नहीं समझा, परंतु जैसे पर्याप्ति होती वैसे इनकी अपर्याप्ति रहती है बस, और उसका जघन्य काल लेना ऐसा लगता है मुझे। फिर गोत्र कर्म के बाद जघन्य अनुभाग का कौन है, हाँ तो संयम सम्यक के अनुभव मुख वाला गया, कौन सा सात्विक नरक वाला ना। अभी ऐसी ओघ की प्ररूपना कहाँ कहाँ होती है, तो पंचेंद्रियों में, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, लोभ कषाय वाले, क्योंकि वो दसवें गुण स्थान वाली बात उसमें घटित होगी, चक्षुदर्शन या चक्षुदर्शनी, भव्य संज्ञा और आहार, यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था। हाँ नीच गोत्र लेना, क्योंकि सातवें नरक में अनिवृत्तिकरण के अंत समय तक नीच गोत्र का बंध होता है, अन्यत्र क्या होता है प्रायोगलब्धि में उसका बंध रुक जाता है। नरक गति में सातवें नरक में क्या होता है अनिवृत्तिकरण के, यानी वहाँ मिथ्या दृष्टि जीव तो तीन इंच गति का ही बंद करता रहता है और निज गोत्र ही बांधता है। जघन्य कम है, यानी ये जो अल्प बहुत ख्याल में आए तो ये बात और ख्याल में, अभी तो स्वामित्व में वैसे क्लियर हो रहा है अपने को। अब यहाँ नारकियों में हम देखेंगे चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर असंयत समय दृष्टि जीव, उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, क्योंकि यहाँ विशुद्धि ज्यादा है, वहां चार घाती कर्मों का अनुभाग बंध जघन्य होगा। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान है, यानी वैदिनी नाम में हमने देखा था परिवर्तमान, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, और गोत्र में तो सातवें नरक में, क्योंकि नरक के नारकी की प्ररूपना चल रही है, इसलिए भोग के समान का। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, अब ये पर्याप्ति पूर्ण करने वाला ही है, और मध्यम परिणाम वाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। परंतु ये लिखने की क्या जरूरत है, जघन्य पर्याप्त निवृत्ति का अर्थ नहीं समझ में आया, वहां जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान लिया, परंतु ठीक है, वहां अपर्याप्त अवस्था में वो बांध रहा था आयु, इसलिए उसको ले लिया था वहां पर, परंतु यहाँ पर ये तो अंतिम छह महीने में आयु का बंद करेगा, तो यहाँ जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान का क्या उसमें उसके साथ क्या संबंध है, ये ख्याल में नहीं आया। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, ऊपर के अन्य पृथ्वियों में भी वही भंग है आयु के लिए, और ये वेदिनी नाम गोत्र के लिए भी इतनी विशेषता है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है सातवीं पृथ्वी में? तो परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, क्या कहते, नरक, नरक की बात, ऊपर की अन्य पृथ्वी में भी इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो कहते परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि जो गोत्र में साता साता कहाँ से लेंगे, गोचर में तो उच्च नीचे लेना, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी
उच्च गोत्र का भी
ऐसा नहीं, अभी अपने दिमाग में चला, यहाँ पर अभी तो हमने शुरू किया है, अभी पूरा ख्याल नहीं आया है। परिवर्तमान परिणामों में लगाना है, हाँ मध्यम परिणामों में भी परिवर्तमान होते होगी ना उसमें, इससे उसमें वो नक्की क्या होता है मुझे भी ख्याल भी नहीं आया है। उत्कृष्ट है ना जघन्य है, वो परिणाम मध्यम है, इस तरह से लेना। उनका प्रश्न है परिणामों में परिवर्तमान, देखो जरा इंडेक्स निकाल, अल्पभूत तो होना ही चाहिए ना, परस्थान अल्पभूत, हाँ कौन से कर्मों से कौन से कर्मों का अनुभव ज्यादा है कौन मेमोदे, वो मूल प्रकृतियों में है, उत्तर प्रकृतियों में नहीं है। हमने कहाँ पढ़ा था आपको याद है, हमने अनुभव के 64 नंबरिंग देखे थे क्रम से। कर्मकांड की पुस्तक देना जरा, पहले नंबर की ब्लू वाली। यहाँ राइट साइड से दूसरी तीसरी कोई नहीं, वो ब्लू। हाँ वो वही 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 समय ज्ञान चंद्री का कर्मकांड है वो। वो पहला नहीं हो सकता, दूसरा है वो। कर्मकांड है ना, कर्मकांड ही चाहिए मेरे। पहला दे दो, अनुभव बंद उसी में होगा, दूसरे में तो आधार आदि। हाँ उसमें पांच विभाग में मिलेगा, परंतु यहाँ अनुभाग बंध में है क्या देखते हैं हम। तो बस नहीं, नीचे है पीछे वहां बंध का दे।
क्या
थैली में हो, थैली में होगा या पीछे के बाले में होगा, थैली में होगा, पांच छह सात उसी के अंदर। देखो परिवर्तमान किसको कहते हैं, इसका मुझे मिल गया है, वहां तो हम पढ़ेंगे। परिवर्तमान और परिवर्तमान की बात देखो, देखो यहाँ अपरिवर्तमान मध्यम परिणाम और परिवर्तमान मध्यम परिणाम का लक्षण कहते हैं। अनुसमय अर्थात प्रति समय केवल वर्धमान अर्थात बढ़ते ही जाए और हीयमान अर्थात घटते ही जाए, ऐसे जो संक्लेश रूप और विशुद्ध रूप परिणाम वे अपरिवर्तमान कहलाते हैं, क्योंकि यह परिणाम पलटकर उल्टा नहीं आया। पुनश्च जिस परिणाम में स्थित होकर और परिणामांतर को प्राप्त होकर किसी एक परिणाम से पलटकर उसी परिणाम को प्राप्त होना शक्य है, वापस उसी परिणाम में आता है, वे परिणाम परिवर्तमान कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ परिणाम पलटकर उल्टा आया। वहां उत्कृष्ट मध्यम जघन्य स्तर परिणाम तीन प्रकार के हैं। वहां सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम द्वारा जघन्य अनुभाग बंध नहीं होता, क्योंकि अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग से अनंत गुणा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग है। इसी का भावार्थ, सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों से तो शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध होता है। यहां जघन्य अनुभाग का कथन है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध परिणाम का ग्रहण नहीं करना और सर्वोत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से भी जघन्य अनुभाग बंद नहीं होता, क्योंकि तीव्र संक्लेश द्वारा अशुभ प्रकृतियों का अनुभव बुद्धि रूप बहुत होता है। क्या कहना चाहते हैं? तीव्र संक्लेश कहेंगे तो हम मूल प्रकृति की बात करें, तीव्र संक्लेश कहेंगे तो वेदनीय का बंध तो ज्यादा ही होगा, क्यों? असाता वेदनीय का, और तीव्र विशुद्धि अति विशुद्धि होगी तो साता का, यानी वेदनीय तो ज्यादा अनुभव वाला बंधेगा ही बंधेगा, तो कम अनुभव कब होगा? तो मध्यम परिणामों में होगा। अभी सुनो, ये पहले पूरा सुनो, ये पेज नंबर 187-188, इसका ग्रास होने दो, फिर आप नए नए प्रश्न उठाना। समय ज्ञान चंद्रिका कर्म का अनुभाग बंद के प्रकरण में इन्हें मूल प्रकृति अभी साता की होती तो हम विशुद्धि में जघन्य बंध कहते, सॉरी उत्कृष्ट बंध कहते, यहाँ जघन्य की बात है। तो जघन्य तो संक्लेश में भी नहीं होता, साता का जघन्य कब होगा? जहां से वो पलटकर दूसरे परिणाम को प्राप्त, ऐसे मध्यम परिणाम में होगा, यानी वहां असाता का भी हो सकता है, साता का भी हो सकता है, मध्यम परिणाम होगा। संक्लेश की ओर जाएंगे तो असाता का उत्कृष्ट होगा, विशुद्धि की ओर जाएगी तो साता का उत्कृष्ट होगा, यानी वेदनी का उत्कृष्ट दोनों ओर होगा। तो वेदनी का जघन्य कब होगा? मध्यम में, और वो कैसे परिणाम है? परिवर्तमान है। जैसे तीव्र संक्लेश तो बढ़ते ही जाए, या संक्लेश की ओर या विशुद्धि की ओर वो बढ़ते ही जाते हैं, और मध्यम कैसे? वापस लौटकर उसी परिणाम में फिर लोग जीव आता है। यानी यहाँ जघन्य का अनुभव का कथन, इसलिए सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध संक्लेश परिणाम का भी ग्रहण नहीं करना और सर्वोत्कृष्ट विशुद्ध का भी नहीं। इस कारण जघन्य और उत्कृष्ट परिणामों के निराकरण के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणामों द्वारा, ये मध्यम परिणाम है और वो परिवर्तमान है, क्योंकि तीव्र संक्लेश कहेंगे तीव्र विशुद्धि वो तो परिवर्तमान नहीं कहेंगे, वहां पर पूर्वोक्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभव बंद होता है ऐसा कहा है। अब ये कौन सी प्रकृति है कि यह मध्यम परिणामी जीव इसको जघन्य अनुभाग से ही बांधते हैं? देखो ये और भी पढ़ते जरा आगे, उसकी बात पढ़ने के पहले अभी जिनका जघन्य अनुभाग होता है उसकी बात पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से, परंतु पढ़ लेते हैं। पीछे और एक पुस्तक होगी, आपको ले लेना है, लक्ष्मी जी आपको चाहिए तो। नहीं आप देख लो, एक है ना वहां सामने ही खड़ा वो, हाँ वो वाला देखो, जिनके ये गाथा नंबर 170 पेज, जिनके जघन्य अनुभाग बंद होते हैं उनका कथन करते हैं। यहाँ कौन सी प्रकृतियों का जघन्य होता है उस वहां से उस ओर से कथन है, हमें कुछ इसका उपयोग होगा अपने विषय में। अप्रशस्त वर्णादि 4, उपघात ज्ञानावरण 5, अंतराय 5, दर्शनावरण 4, निद्रा प्रचला, हास्यरति भय जुगुप्सा, पुरुषवेद संज्वलन कषाय 4, इन 30 प्रकृतियों का अपनी अपनी बंध की विच्छित्ति जहाँ होती है वहाँ इनका जघन्य अनुभाग बंध होता है। क्योंकि कैसी ये सारी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, ऊपर के गुणस्थानों में जहां इसकी बंध विच्छित्ति है वहां उसका जघन्य अनुभव होता है, बंध होता है। क्योंकि हमने देखा ना ये कैसी है, जब तक विच्छित्ति नहीं होती तब तक ये बनती रहती है इसी। अभी हास्यरति का ऑप्शन है परंतु यहाँ हास्यरति को भी ले लिया वहां पर। अब अनंतानुबंधी 4, स्त्यान वृद्धि 3, मिथ्यात्व ये 8, मिथ्यात्व गुणस्थान में यानी कौन सा है, वो संयम के अभिमुख वाला लिया। अप्रत्याख्यानावरण 4 कषाय है असंयत में, वो भी संयम के अभिमुख वाला ले सकते हैं, वहां उसका जघन्य बंध होगा अनुभाग का। प्रत्याख्यानावरण 4 देश संयत में, वो भी संयम के अभिमुख वाला ले सकते हैं। ये 16 प्रकृतियां जो जीव इन गुणस्थानों में संयम गुण धारण करने के सम्मुख हुआ हो ऐसे विशुद्ध जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। ये तो क्लियर हुआ ना। अब आहारक प्रशस्त प्रकृति है, इसलिए प्रमत्त विरत्त गुणस्थान के सन्मुख हुए संक्लेशी अप्रमत्त विरत्त गुणस्थानवर्ती जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। अरति और शोक अप्रशस्त है, इसलिए अप्रमत्त विरत्त गुणस्थान के सन्मुख हुए विशुद्ध प्रमत्त विरत्त गुणस्थानवर्ती जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। क्योंकि यहीं पर वो सातवें में तो है नहीं ना, यहाँ बंद विचित्ती है, तो सातवें में जाने वाले को लेना। पुनश्च सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण ये तीन द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय ये तीन देव द्विक नरक द्विक वैक्रेक द्विक ये छह आयु चार ये सोलह प्रकृतियां मनुष्य और तिर्यंश के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। अभी हमने देखा था ना मनुष्य आयु तिर्यंश आयु भी चारों आयु ली, चारों आयु का जघन्य अनुभाग बंद इनके होगा, क्योंकि देवायु और नरकायु तो मनुष्य तिर्यंशों की बनती है और जघन्य अनुभाग सहित यानी वो लब्धि अपर्याप्त संबंधी आयु यही दो जीव बांधेंगे, देव और नर की इनको बंद नहीं करेंगे। मनुष्य और तिर्यंश दोनों को लिया, दोनों को लिया। उद्योत और औदारिक द्विक देव और नारकी के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। वहां उद्योत प्रकृति अति विशुद्ध परिणामी देव के तो बनती नहीं, इसलिए संक्लेशी के जघन्य अनुभाग सहित बनती है, क्योंकि ये शुभ प्रकृति, क्योंकि उद्योत प्रकृति प्रशस्त है। तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र ये सातवें नरक में विशुद्ध जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। अभी हमने देखा ना सम्यक्त्व के सम्मुख वाले बोले स्थावर एकेंद्रीय दो प्रकृतियां नारकी को छोड़कर तीन गति वाले जीव उत्कृष्ट संक्लेश और विशुद्ध परिणाम से रहित मध्यम परिणाम जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है, क्योंकि फिर भी अत्यंत संक्लेश वाला भी नहीं लेना है कि वहां तीव्र अनुभव होगा, ये अप्रशस्त प्रकृति है, मध्यम परिणाम से इसका जघन्य बंद होगा। पढ़े क्या सब ऊपर जा रहे, थोड़ा पढ़ लेते दो पैरेग्राफ है। आतप प्रकृति संक्लेश परिणामी भवनत्रिक और स्वधर्म द्विक के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। उद्योग भी संक्लेश वाले आतप भी प्रशस्त है, इसीलिए उद्योग तो ऊपर के देवों को भी और नारकी उनके भी बनती है, आतप तो नारकी को नहीं बंधेगी। हाँ तो प्रशस्त प्रकृति का अनुभव जघन्य बंधेगा। तीर्थंकर प्रकृति नरक जाने के सन्मुख हुए असंयत गुणस्थानवर्ती मनुष्य के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। हमने देखा था स्थिति उसकी उत्कृष्ट वहीं पर बनती है, ये प्रशस्त प्रकृति की जहाँ विशुद्धि जघन्य कम है या संक्लेश ज्यादा है वहां स्थिति ज्यादा बंधेगी और अनुभव कम बंधेगा, तो ये घटित होता है। अभी 15 प्रकृतियां ऐसी की जो चारों गतियों के संक्लेशी जीवों के बनती है, तो ये कौन सी है, तो परघात उच्छ्वास तेजस कारमाण त्रसव आदर पर्याप्त प्रत्येक वर्णादि शुभ शुभ वर्णादि निर्माण पंचेन्द्रिय अगुर्लघु, ये 15 प्रकृतियां चारों गति के संक्लेशी जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। क्योंकि वैसे तो प्रशस्त प्रकृतियां है, क्योंकि ये प्रकृतियां प्रशस्त है। स्त्री वेद और नपुसक वेद दोनों अप्रशस्त है, इसलिए चारों गति के विशुद्ध जीव के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। अब यहाँ जो कुछ ऐसी आठ प्रकृतियां है कि जो अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के, मध्यम परिणाम में भी अपरिवर्तमान भी है, कौन सी स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति और साता असाता, मध्यम परिणामी सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। और परिवर्तमान के लिए उच्च गोत्र संस्थान जगन्य बन है। ये अलग अलग वेदनीय जनरल नहीं लिया, चलो अभी हम आते हैं अपने पेज उत्तर प्रकृति में अल्प बहुत असाता वेदनी सबसे मंद अनुभाग वाला है, इससे साता वेदनी का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है। जगन्य का जगन्य भी असाता वेदनी के जगन्य से साता वेदनी का जगन्य अनंत गुणा अनुभाग है। ये जो है ना पूरा साता का जगन्य जाता है। देखो देखो जगन्य का ही पढ़ना है ना अल्प बहुत, ये पांचवी पुस्तक में से मैं पढ़ रही हूँ महाबंध के 224 पेज। ओग से मन परि ज्ञानावरण सबसे मंद अनुभाग वाला है, इससे अवधि ज्ञानावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे श्रुति ज्ञानावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, जगन्य अनुभाग हो, इससे अभिनिबोधि ज्ञानावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है और इससे केवल ज्ञानावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है। ये अप्रशस्त प्रकृतियां है, वो जगन्य अनुभाग अधिक अधिक वाला है। अवधि दर्शनावरण सब अभी दर्शनावरण है, अवधि दर्शनावरण सबसे मंद अनुभाग वाला है, इससे अचक्षु दर्शनावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे चक्षु दर्शनावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है और इससे केवल दर्शनावरण का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे प्रचला का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे निद्रा का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे प्रचला प्रचला का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे निद्रा निद्रा का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है और इससे स्त्यान वृद्धि का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है। अभी असाता साता की बात पढ़ी मैंने, लोभ संज्वलन सबसे मंद अनुभाग वाला है, यानी जगन्य की बात चल रही है, उससे माया संज्वलन का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे मान संज्वलन का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे क्रोध संज्वलन का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है। जो बाद में बंद विचित्ति होती है ना इनकी, उसके उल्टे क्रम से हम आगे, क्योंकि इनका जगन्य जहां इसका बंद है लास्ट वहां तक उसका जगन्य होगा। इससे पुरुष वेद का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे हास्य का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे रति का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है प्रकृति के कारण, इससे जुगुप्सा का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है और इससे भय का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, उससे शोक का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे अरति का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे स्त्री वेद का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे नपुसक वेद का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे प्रत्याख्यान मान का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे प्रत्याख्यान क्रोध में विशेष अधिक है, इससे प्रत्याख्यान माया का विशेष अधिक है, प्रत्याख्यान लोभ का विशेष अधिक है, उसमें विशेष अधिक लिया। संज्वलन तो अलग अलग स्टेप पर उसका होता है, यहाँ तो प्रकृति विशेष के कारण हमने हमेशा देखा था कि हमेशा मान क्रोध माया लोभ ऐसा लेते हैं। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान चार अनंतानुबंधी चार का कहना चाहिए, अनंतानुबंधी लोभ के अनुभाग से मिथ्यात्व का अनुभाग अनंत गुणा है। आयु में तिर्यंच आयु का सबसे मंद है, इससे मनुष्यायु का अनुभाग अनंत गुणा है, इससे नरकायु का अनुभाग अनंत गुणा है, इससे देवायु का अनुभाग अनंत गुणा है। अभी एक नीच गोत्र का सबसे मंद अनुभाग वाला है, उससे उच्च गोत्र का अनुभाग अनंत गुना है। दानांतराय मंद वाला है, उससे आगे आगे अनंत गुना अनंत गुना। अब मैंने इसको तीरंज गति वगैरह को छोड़ दिया है, नाम कर्म को। जब क्रम से आएगा तब हम पढ़ेंगे उसको।
तो अभी तक हमने जो लिखा था कि जो स्पर्धक के रत्न कमरे इसे समझा था कि जब भी बंद होता है तभी सभी स्पर्धक आए
उस प्रकृति के सभी।
अगर अगर तो अभी जो जगत
उस प्रकृति के सभी
बराबर है। हाँ। तो अभी यहाँ पे जो जगनीय मत बता रहे हैं तो वहाँ पे सभी स्पर्धक पाए गए नहीं पाए गए?
जगन्य जितना अनुभव है वहाँ तक के सभी स्पर्धक। जगन्य जब बंध कहते हैं तो उसमें भी स्पर्धक तो अनंत बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? एक ही स्पर्धक थोड़ी बंधेगा, तो उस जगन्य की जो लिमिट है परमोस उसको जगन्य कहा है। वो जगन्य के जितने स्पर्धक है उतने सब बंधेंगे कि नहीं बंधेंगे? सत्ता का अनुभव अलग बात है, ये बंध की बात चल रही है। जगन्य की जो बंद की जो बंद की जो हाइयर लिमिट है वो उसको लेना है। मान लेते उत्कृष्ट एक से लेकर हजार तक बनते हैं और जगन्य एक से लेकर सौ तक बनते हैं, तो हजार को उत्कृष्ट कहा, सौ को जगन्य कहा, तो एक नंबर सब में आए कि नहीं आए? सत्ता में एक से लेकर हजार तक है, सत्ता में एक से लेकर सौ तक है, परंतु बंध में हम अपर लिमिट देखते हैं कितना है। जगन्य बंध है तो उसकी अपर लिमिट बता रहे, बंध शब्द डाल रहे, उसका अनुभवहीन है ऐसा नहीं कह रहे। और हर प्रकृति का अपना अपना होगा, सत्ता का भी अनुभव अलग अलग होगा। अब यहाँ क्या देखते हैं, हमने नारकियों में पढ़ लिया था। वो अभी नहीं हुआ है, अभी वो आएगी कहीं। हाँ, मध्यम परिणाम का परिवर्तमान और अपरिवर्तमान की बात ख्याल में आई, यानी मूल प्रकृति की अपेक्षा जहाँ प्रतिपक्ष है संक्लेश, उत्कृष्ट संक्लेश की ओर लेंगे तो उसमें से अशुभ प्रकृति का उत्कृष्ट अनुभव होगा। विशुद्धि में मैक्सिमम मिलेगी तो शुभ प्रकृति का मैक्सिमम होगा। तो मूल प्रकृतियों में जघन्य कब होगा तो मध्यम परिणाम होंगे। यहाँ क्या लिखा देखो, गोत्र कर्म की बात, गोत्र कर्म का जघन्य का कौन है? नारकियों में पढ़ रहे थे परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि जो, ये एक से छठे नारकी की बात है। तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध, क्योंकि सातवें नरक में तो हमने देखा था सम्यक के सन्मुख वाला अंतिम अनुभाग बंध में स्थित वाला लिया था। तीरियन चौ में हुआ है, मैं करना उसको आड़ी लाइन रहेगी उसकी। घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग नू रह गया। भक्त स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर संहिता संयत जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। क्योंकि ये चार घाती कर्म है तो वहां विशुद्धि में उसका बंध जगन्य होगा। तो तीरियंचों में सबसे विशुद्ध परिणाम तो पहले में पहले संयता संयत लेना और उसमें भी सर्व विशुद्ध वाला लेना। वेदनी आयु और नाम कर्म का भंग ओह के समान है। वेदनीय में क्या लिया हमने? समय दिशा मध्यम परिणाम वाला है। हाँ, नाम का भी मध्यम परिणाम वाला गया था। आयु कर्म में देखा था तिर्यंच है तो वो अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान मध्यम परिणाम वाला वो लेना है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर अग्नि का एक और बादर वायु का एक जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। हाँ, ये नीच गोत्र ही बांधता है। किससे कौन? हाँ, उससे वो उच्च गोत्र का अनंत गुणा है तो उनमें भी ये नीच गोत्र ही बांधता है। बादर अग्नि का एक वायु का ओग में पर नहीं, उन्होंने अल्प गोत्रों की बात की। ओग में तो सातवें नरक के नारके को लिया था और यहाँ तिर्यंचों में बादर अग्नि का एक वायु का एक वाले को लिया। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनमें गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो कहते हैं परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, जैसे हमने एक से छह नरक तक देखा था, और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय मिथ्यादृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी वो भी वहां नीच गोत्र ही बांध रहा है। वेदनी और हमने नाम ने देखा था ना, समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि दोनों ही बांधते ना उसको। हाँ, ये कहाँ गया अभी? हाँ, ये हो गए सामान्य तिर्यंचों की बात हो गई। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में भी उन्होंने बताया पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदिनी नाम और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान या अपर्याप्त जीव है ना, और मध्यम परिणाम वाला अन्यतर जीव आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त सब विकलेन्द्रिय पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवन के जानना चाहिए। मनुष्य त्रिक में सात कर्मों का भंग ओग के समान है और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो कहते परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला, जैसे तिर्यंचों में देखे हमने, नारकी में पहले से छठे नरक तक के देखे वैसे यहाँ पर है, और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। देवों में उपरिम ग्रेवेक तक दूसरी पृथ्वी के समान बन गया। यानी दूसरी पृथ्वी में कहां डिफरेंस था, वो गोत्र के लिए, बाकी इनके घाती कर्मों का जगन्य कौन करेगा, तो समय दृष्टि सर्व विशुद्धि वाला करेगा। वेदनीय और नाम के लिए समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला लेंगे परिवर्तन। आयु कर्म के वाला उसमें सब पर्याप्ति से पर्याप्त ऐसा लेंगे ना, पर्याप्त निवृत्त से निवृत्त मान, अनमिथ्या दृष्टि जी लेना। अनुदित से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में सात कर्मों का भंग सामान्य देवों के समान है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग भंग का स्वामी कौन है? अब सारे उच्च गोत्र ही बांध रहे, समय दृष्टि है ना, सब सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। उच्च गोत्र का जघन्य बंध करेगा क्योंकि संकलेश ज्यादा है। छोड़ा था ना दूसरी पांचवी पुस्तक में से, उसमें थोड़ा देखते गतियों में कौन से गति का अनुभाग कितना गुना वगैरह। तीर्यंच गति का अनुभाग सबसे मंद है जघन्य में, इससे नरक गति का अनुभाग अनंत गुना है, इससे मनुष्य गति का अनुभाग अनंत गुना है और इससे देव गति का अनुभाग अनंत गुना है। अब जाति में चतुरिंद्रिय जाति का अनुभाग सबसे मंद है, इससे तीन्द्रिय जाति का अनुभाग अनंत गुना अधिक है, इससे द्विन्द्रिय जाति का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है, इससे एकेन्द्रिय जाति का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है और इससे पंचेन्द्रिय जाति का अनुभाग अनंत गुणा अधिक है। औदारिक शरीर सबसे मंद अनुभाग वाला है, इससे वैकरिक शरीर का अनुभाग अनंत गुणा है, इससे तेजस शरीर का अनुभाग अनंत गुणा है, इससे कार्मन शरीर का अनुभाग अनंत गुणा है और इससे आहारक शरीर का अनुभाग अनंत गुणा है। संस्थान में सबसे जघन्य नगरोत् परिमंडलिया, फिर स्वाति अनंत गुणा, कुब्जक उससे अनंत गुणा, वामन उससे अनंत गुणा, कुंडक उससे अनंत गुणा, फिर समचतुर संस्थान का जघन्य अनुभाग उससे अनंत गुणा। इसमें नगरोत् परिमंडल से कुंडक तक आ गए, ये तो सारे अप्रशस्त है, इनका जघन्य क्रम से अनंत गुणा अनंत गुणा, और कुंडक अनंत गुणा उससे भी प्रशस्त समचतुरस्त्र उसका जगन्य उससे भी अनंत गुणा। अंगों का अंग में औदारिक फिर वैक्रिय फिर आहारक फिर तीन ही सहनों का संस्थान के समान है। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क मंद अनुभाग वाला, प्रशस्त वर्ण चतुष्क जगन्य अनुभाग अनंत गुणा, गति और गत्यानुकूल भी समान है। उपघात मंद अनुभाग वाला, परघात का अनुभाग अनंत गुणा, क्योंकि उपघात अप्रशस्त है परघात प्रशस्त। उच्छ्वास का अनुभाग अनंत गुणा, इससे अगुर लघु का अनंत गुणा, अप्रशस्त का मंद प्रशस्त विहाय गति का अनंत गुणा, और त्रस वगैरह जो युगल है दस उसमें साता असाता के समान है, क्योंकि असाता से साता का जगन्य अनंत गुणा देखा। अब इसकी कुछ बातें हमें शायद यहाँ ख्याल में आने के लिए आसान होगी। अब यहाँ अपने पढ़ते हैं पेज नंबर 20 पर, एकेंद्रियों में इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा एकेंद्रियों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एक इंद्रिय जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी, जैसे हमने स्थिति बंध में भी देखे थे इसे यहाँ पर अनुभाग बंध में। वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म का भंग सामान्य तीन इंचों के समान, वेदनीय नाम गोत्र के लिए क्या लिया था हमने वो, हाँ उसमें तो परिवर्तमान को लिया था गोत्र, एक केंद्रियों में तो अग्नि का एक एक को भी लेना ना कि नहीं, ओग के समान लिया है। हाँ अग्नि का एक वायु का एक के जगह में इसी प्रकार बादर एक केंद्रीय सूक्ष्म एक केंद्रीय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवन के जानना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ, पृथ्वी कायिक ये काय मार्गणा, जल कायिक वनस्पति कायिक, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवों में, चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, के साकार जागृत। अब इसमें बादर जीव होते हैं ना, बादर पर्याप्त वो इसके स्वामी हो गए। साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर पर्याप्त उक्त जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। तीन कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, हाँ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त लिख दिया था ना उन्होंने, इसलिए वो पर्याप्त होते हैं। हाँ परंतु सब पर्याप्तियों से पर्याप्त जो लिखा है उसमें वो घटित हो जाता है कि वो पर्याप्त है। ये सब पर्याप्तियों से पर्याप्त लिखा था ना, और यहाँ उनको ऐसे इस तरह से लिए साकार जागृत सर्व विशुद्ध जगन स्थित अन्यतर बादर पर्याप्त उक्त जीव, हाँ उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। तीन कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला उक्त जीव तीन कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, और आयु कर्म के जघन्य का कौन है, अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान, यानी वो लब्धि अपर्याप्त जीव इतना ले ला उसका मध्यम परिणाम वाला और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव अन्यतर उक्त जीव आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान लिया ना, आयु कर्म के जघन्य में उसको लेना है। इसी प्रकार इनके बादर, इनके नहीं वो कायिक बताए ना ऊपर के, इनके बादर फिर सूक्ष्म में भी ऐसे कथन घटित होगा तथा इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवन के जानना चाहिए। अब दो कायिक छोड़े थे, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों में चार घाती कर्म और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर पर्याप्त जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग पृथ्वी कायिक जीवों के समान है। वो मार्गना है उनकी है ना, अग्नि काय उनकी, इसलिए उनमें जो जघन्य होगा कौन करेगा, तो बांदर करेगा। औदारिक काय योगी ये कौन सी मार्गना है नितिन भाई, हाँ कौन सी काय मार्गना है इसमें, औदारिक काय ये कौन सी मार्गना है, काय मार्गना के भेद बताएंगे आप,
गाड़ी खा रही हो, ब्रेक खा रही हो,
योग क्यों लगा रहे हो?
कारमा था
योग मार।
अच्छा योग ही था,
ये योग है। काय मार्गणा के भेद कौन से? त्रस काय और पांच स्थावर काय अलग अलग, जो भी हम ऊपर पढ़े हैं, पृथ्वी काय, जल काय, वनस्पति काय, अग्नि काय, वायु काय, वो है काय मार्गणा और ये है योग मार्गणा। समय सर अनुशीलन में यही भूल हुई थी पहले भाग में, जो हमने वो बताई थी उसको सुधारा थी दुर्गा। काय मार्गणा की अपेक्षा उदारिक काय योगी लिखा था वहां। औदारिक काय योगी जीवों में सात कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का भंग ओह के समान है। गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी, क्योंकि ओह में तो गोत्र के लिए वो सातवें नरक का नारकी लिया था, औदारिक का योग में तो वो घटित नहीं होगा, तो वहां क्या होगा? साकार जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर बादर अग्नि का एक और वायु का एक जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी, जैसे तीर्यंचों में हमने देखा था। तीर्यंच सामान्य में इनको लिया था, वो सामान्य नारकी को लिया था, सातवें नरक के नारकी को। ख्याल में आ रही बात? औदारिक का योग में घटाना था, ओग में तो हमने सातवें नरक के नारकी की बात देखी, फिर सामान्य तीरंजों की जब बात आई थी यही लिए, तो बाद रग्नि का एक वायु का। औदारिक मिश्र का योगी जीवों में चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा, यानी औदारिक मिश्र का अंतिम समय है, ऐसा अन्यतर तीर्यंच और मनुष्य कौन लिया आगे? असंयत समय दृष्टि जो, क्योंकि औदारिक मिश्र में विशुद्धित्व वाला वही जीव है ना, समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गोत्र कर्म का भंग एक इंद्रियों के समान है, इतनी विशेषता है, तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा ऐसा कहना चाहिए। संकलेश हो या विशुद्ध हो वहां पर ज्यादा होगी, अब यहां तो मध्यम ही लेना है ना, इसे तो मध्यम ही परिणाम लेना था। हाँ औदारिक मिश्र का योगी उसमें भी कब होगा?
मिश्र का अंतिम समय
तभी है ना। मैं उन्हें तीर्यंचों के समान नहीं कहते, एक इंद्रियों के समान बताया था। पीछे चलिए, हाँ सामान्य तीर्यंचों के समान कहा ही था ना, मैंने अग्नि का एक वाले उसको ही लेना। शेष कर्मों का भंग ओग के समान है। शेष कर्म कौन से रह गए अभी? आयु भी रह गया ना, औदारिक मिश्र में लब्धि पर्याप्तक वाला लेना और उस समय आयु का बंद करने वाला लब्धि पर्याप्त ही होता है, क्योंकि जो पर्याप्त होने वाले जीव है आयु का बंद करेंगे नहीं। मध्यम परिणाम वाला लेना उसमें वेदनी। हाँ, वैक्रिक का योगी जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी यहाँ विशुद्धि चाहिए ज्यादा, तो कौन वैक्रिक का योग किसके होता है पहले ये नक्की करना। देव और नारकी के, देव और नारकियों में अधिक से अधिक कौन सा गुणस्थान होगा? चौथा। तो उसमें जो विशुद्ध वाला है वो ले लें। तो वैक्रिक का योगी जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयत सम्य दृष्टि जी चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गोत्र कर्म का भंग ओह के समान है, सातवें नरक का है। वो सम्यक्त्व के सम्मुख वाला। वेदनीय आयु और नाम कर्म का भंग सामान्य नारकियों के समान है। आयु में तो वो तो मध्यम परिणाम वाला, वो तो सब पर्याप्त है, उनसे पर्याप्त वगैरह वगैरह बात की थी। और वेदनीय और नाम के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला। हाँ, नारकियों में देखा था ना। ओक के समान ही तो बताया था, वेदनी और नाम में कौन लिया था? परिवर्तमान समय दृष्टि। आहार का योगी जीवन में वैकृत मिश्र रहेगी अभी। हाँ, वैकृत मिश्र का योगी जीवन में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ऐसा साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतः देव और नारकी असंयत समय दृष्टि जीव चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। यहाँ ऐसा नहीं लिया कि उपशम श्रेणी से मरकर आने वाला, इसको नहीं लिया देव को। ये शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा ऐसा वाला लिया। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध वाले को लिया। और तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करेगा। ओ, ऐसा अन्यतः सातवीं पृथ्वी का नारकी मिथ्या दृष्टि जीव। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी वो नीच गोत्र ही है।
क्या
परंतु वो उसका जघन्य नहीं होगा ना। वेदनीय में जो जघन्य है वो तो निज गोत्र में घटित होगा, क्योंकि उच्च गोत्र का जघन्य निज गोत्र के जघन्य से अनंत गुणा है। वेदनीय और नाम कर्म का भंग ओह के समान है, परिवर्तमान वाला मिथ्या दृष्टि समय। आहार का योगी जीव में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार, जागृत और सर्व विशुद्ध अन्यतर जीव गुप्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गुणस्थान कौन सा है नितिन भाई? हाँ, छठ शेष कर्मों का भंग अनुदिश के समान है। क्या है वहां तो सारे समय दृष्टि थे ना, अब इसको अनुदिश में हमने कैसे घटित किया था? चार घाती तो बता दिए उन्होंने, सर्व विशुद्ध वाले को ले लिया, वेदिनी और नाम को गोत्र कर्म के जघन्य वाला उत्कृष्ट संकेश वाला लिया। और वेदनी की कहां बात की थी? हाँ, सात कर्मों का सामान्य देव दो, वो परिवर्तमान वाली ले लेना, परिवर्तमान मध्यम परिणाम है ना। इसी प्रकार आहार मिश्र कायोगी जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। जो तदनंतर समय में शरीर पर्याप्ति को ग्रहण करेगा उसके कहना चाहिए। कार्मण कायोगी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभव बंद का स्वामी कौन है? अभी घाती कर्म है अप्रशस्त, उसका जघन्य कब होगा? तो विशुद्धि के काल में। तो कार्मण का योग में किसको लेना? समय दृष्टि को लेना। साकार जागृत सर्व विशुद्ध जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथ्वी का मिथ्या दृष्टि नारकी। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव कर्मण वेदनीय है और नाम है। गोत्र कर्म को भी कर्मण का योग में भी सातवीं पृथ्वी का नारकी जघन्य बांध रहा है। हाँ वो तो वहाँ तो समझ में आता है कि वो तो प्राग लब्धि के अंत तक बनती है, इसलिए तो यहाँ पर भी उसको ही लिया।
तो सर्व विशुद्ध परिणाम में भी बीज गोत्र बन जाएगा, तो उसका जगन ही हो जाएगा ना, क्योंकि हम ये तरह कभी कभी देखते हैं विशुद्ध परिणाम में उच्च गोत्र बन जाएगा।
कार्मण का योग में अन्य नारकी अन्य पहले दूसरे नरक के नारकी नहीं बांध सकते,
इतना विशुद्ध परिणाम हो जाएगा तो वो उच्च पुत्र बांध देगा मनुष्य का ठीक
है। जाते समय नहीं कार्मण का योग है वो नारकी हो गए अभी, वहाँ तो दो तीन इंच गति के साथ नीच गोत्र बांध रहा थे और विशुद्ध वाला लिया उसमें, अन्य जो अन्य विशुद्धि है तो उच्च गोत्र बांधेंगे।
हाँ
सर्व विशुद्ध काल में भी वो तो नीच गोत्र ही बांध रहा है, इसलिए शेष कर्मों के, अभी कर्मण का योग है तो आयु को नहीं लेना है, गोत्र को बता दिया, वेदिनी और नाम रहेगी। जगन्य अनुभाग बंद का स्वामी परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला समय दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव। हाँ, वेदिनी और नाम, क्योंकि आयु तो यहाँ बनती नहीं कर्मण का योग में। अब वेद मार्गना, स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में, अब ये वेदी है तो जहाँ वेद का अंतिम उसका उदय का काल है नवे में, वहाँ घाती कर्मों का जगन्य कहेंगे ना। चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अंतिम जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्ति करण जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है, सवेद अवस्था वाला शपक अनिवृत्तिकरण करने से उसके लास्ट तक नहीं जाना। वेदिनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जगन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतः तीन गति का जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म का भंग ओघ के समान है। अभी यहाँ अपर्याप्त कैसा लेना, वहां लिखा था ना कुछ, जगन ने अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान लिया था। तीर्यंच पर्याप्त में क्या लिखा था? दृष्टि लेना चाहिए परंतु स्त्री वेदी और पुरुष वेदी तो पर्याप्ति से पर्याप्त ऐसा कुछ डालना पड़ेगा शायद। जगन ने पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान, गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तीन गति का मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। नपुसक वेदी जीवों में, आयु कर्म में जगन्य अपर्याप्त अपर्याप्ति से वो तो नहीं होगा निवृत्ति से निवृत्त मान, जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान कहना पड़ेगा। जगन्य पर्याप्ति निवृत्ति से निवृत्त मान, अभी बांधने वाले स्त्री वेदी और पुरुष वेदी है। ना, आयु बांध रहे हैं ना। अभी उत्कृष्ट में तो हम नरकायु को लिया था, जगन्य आयु तो जगन्य अनुभाग का लब्धि अपर्याप्त संबंधी आयु बांध रहे ऐसा लेंगे।
स्त्री वेदी पुरुष वेदी मार्गना,
वेद मार्गना में वो बांधने वाले स्त्री वेदी जीव है। और वो तीर्यंच आयु मनुष्य आयु का जगन्य बांधेंगे। क्योंकि हमने अल्प अभी आयु के अल्प बहुत हमें तीरे तीरियन चाहिए बात दोनों ही तीन चायु का जगन्य तीन चायु का होता है कहाँ का है तो तीनों गति का मिथ्या दृष्टि है वो गोत्र कर्म के जगन्य निर्वाह बंध का नहीं वो आयु कर्म की बात देख रही है नपुसक वेदी जीवों में चार घाती कर्मों का भंग स्त्री वेदी जीवों के समान शपक वेदिनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है अन्यतर तीन गति का जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है वो हमने परिवर्तमान वगैरह लिख आयु और गोत्र कर्म का भंग ओग के समान है यहाँ ओग के समान बराबर घटित होता है क्योंकि वो तो लव्य पर्याप्त होता है क्या फिर से दोबारा
नपुंसक वेदी तो लव्य पर्याप्त होता है तो वहाँ पे अपर्याप्त भी ले जाते कर देते
कौन सी बात जगन्य बंध तो पर्याप्त जीव करेंगे ना
बादल पर्याप्त
ना 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 उस वेदिनी में कहा हमने पर्याप्त अपर्याप्त बादल की बात की थी वेदिनी में कभी बात ही नहीं है आयु के बारे में बात थी वेदिनी के बारे में कभी बात ही नहीं आई थी वो पर्याप्त पर्याप्त की परिवर्तमान की बात आई थी आयु में लभ्य पर्याप्त ये ओ के समान घटित होगा और गोत्र में भी सातवें नरक तक घटित होगा अपगत वेदी जीवों में अभी आयु का सवाल नहीं है चार घाती कर्मों का भंग ओग के समान है शपक में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के अब ये भी यहाँ तो वेदनीय में तो कौन सा बन रहा है साता बन रहा है नाम कर्म कौन सा बन रहा है कौन सा प्रशस्त यशस कीर्ति एक ही मान और गोत्र तो उच्च गोत्र का बन तो जगन गिरने वाला क्यों प्रशस्त प्रकृति का अनुभाग ज्यादा होगा तो अंतिम जगन्य अनुभाग में अवस्थित अन्यतर गिरने वाला उपशामक उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी यानी अभी वो अपगत वेदी से सवेद होने वाला है क्रोध मान और माया कषाय वाले जीवों में चार घाती कर्मों का भंग नपुसक वेदी के समान है ये घाती कर्म अप्रशस्त है और उसका क्रोध के उदय का अंतिम समय मान के उदय का माया के अंतिम समय वहां लेना शपक में वेदनी और नाम कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जगन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है आयु और गोत्र कर्म का भंग ओह के समान है क्योंकि क्रोध मान माया लोग तो सभी एक इंद्रिय से लेकर सब में है तो ओह में जो हमने आयु के लिए वो जो लब्ध्य पर्याप्त देखा था गोत्र के लिए नाश के देखा था मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में चार घाती कर्मों के जघन्य अनुभाग बनने का स्वामी कौन है, तो ये संयम के अभिमुख वाला लेना, क्योंकि उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी उस समय। साकार जागृत सर्व विशुद्ध संयम के अभिमुख अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग ओह के समान है, क्योंकि हमने इस समय दूसरी मिथ्या दृष्टि को देखा था, वेदनीय नाम की बात, और गोत्र भी वो सातवें नरक में घटित होगा, आयु की भी बात वो लब्धि पर्याप्ति की घटित होगी। इसी प्रकार विभंग ज्ञानी अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता कि अभव्य जीवों में द्रव्य संयत जीवों के जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए। द्रव्य संयमी समझते, द्रव्य लिंगी में अभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों में अब सारे समय दृष्टि है, घाती कर्म तो क्षपक में होगी। चार घाती कर्मों का भंग ओग के समान है। वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, अन्यतर चार गति का जीव परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला है। आयु के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, जघन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवर्तमान और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। क्योंकि समय दृष्टि है, मनुष्य तीरें देवायु बांधेंगे, देव और नार की मनुष्य बांधेंगे, है ना। और उसमें भी वो जघन्य अनुभाग बंद कर रहा है, ऐसा जीव लिया। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंद का स्वामी कौन है, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त, क्योंकि अभी गोत्र कर्म कौन से बांधेंगे, समय दृष्टि तो उत्कृष्ट गोत्र बांधेंगे, तो उनके उच्च गोत्र में जघन्य कब बंधेगा, तो संकलेश परिणाम में बंधेगा। तो उत्कृष्ट संकलेश कब होगा, मिथ्या तो के अभिमुख वाले के होगा। इसलिए चारों गति के लिए ना कहा गया, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्या तो के अभिमुख और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। ये ख्याल में आ रही बात। मन परे ज्ञानी जीवों में अभी इसमें तो घाती कर्मों का तो क्षपक में होगा, यहाँ वेदनीय से बात उठाई। वेदनीय और गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त असंयम के अभिमुख और जघन्य अनुभाग बंध में विद्यमान अन्यतर जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अभी गोत्र में तो वो उच्च गोत्र ही बांध रहा है, और उसका जघन्य बंध कब होगा, हाँ मनोपरि ज्ञानी, इसलिए असंयम के अभिमुख लिया, मिथ्या तो के अभिमुख नहीं लिया। और वेदनीय में परंतु वेदनीय में परिवर्तमान क्यों नहीं लिया, हाँ छठे गुणस्तर में तो दोनों का बंध है, तो परिवर्तमान क्यों नहीं लिया, नीचे गोत्र कर्म के जगह ने अनुभव बंध का लिखा, ऊपर क्या लिखा है, बोध जन कश अन्नदर सांगार जन निरंकुश संकेत शेषम अभिनिबोधिक भंगो। अभिनिबोधिक के लिए क्या लिखा था, गोत्र के लिए मिथ्यात्व के अभिमुख लिया और यहाँ असंयम के अभिमुख लिया, और वहाँ वेदनीय और नाम को अलग से लिया है ना, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला। यहाँ वेदनीय लेने से कैसे घटित होगा, मेरे ख्याल से वो गलत पड़ा है क्या, बोध जहन कस अन्न सागर यहाँ नियम उप वर्तमान, पर ये यहाँ गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी लिखा है यहाँ उन्होंने, फिर गोत्र कर्म का क्यों लिखा दोबारा। तो गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी उक्त कर्मों के लिखते हैं जगन, गोत्र कर्म का नाम क्यों लिखा, ना ना वेदनीय जो लिखना ही नहीं था, वे लिखा है ना ऊपर मनपज्जव वे, अन्यत्र वे लिखा है कि वेद लिखा है सब जगह, तो ये वे लिखने का क्या प्रयोजन था, सब जगह वेद लिखा है, जो लेफ्ट साइड में देखो 22 पेज पर तीसरी लाइन में है, फिर हर प्ररूपना में वेद वेद लिखा है, वे शब्द नहीं चाहिए था वहां, वे को राउंड करके क्वेश्चन मार्क करके डिलीट लिखना चाहिए, यानी वेदनीय नहीं चाहिए यहाँ जीवन में गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग का, वेदनीय और गोत्र कर्म लिखा है ना 69 में मनपरिज्ञानी जीव में, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो उत्कृष्ट संकलेश वाला साकुरा जागृत, और वो कौन सा है मनपरिज्ञानी, इसलिए असंयम के अभिमुख लिया, और फिर कहेंगे शेष कर्मों का भंग अभिनिबोधिक ज्ञानी जीवों के समान है, यानी इसमें वेदनीय के लिए और नाम कर्म के लिए परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला लेना चाहिए, वो शेष कर्मों में आ जाएगा। वो तो हो गया ना, उसके कौन ना करे, वेदनीय के बारे में प्रश्न चल रहा था, क्या वेदनीय में ऐसे लेना है कि संयम के अभिमुख वाला छठा गुण स्थान वर्ती है, वो कौन सा बांधेंगे मनोपरिज्ञान, स्वामी तो इसी में अपने में ही है, हाँ उत्तर प्रकृति यहीं पर शुरू हुई है ना, उत्तर प्रकृतियों का स्वामी तो इसी में होगा 217 वगैरह आगे, किसमें देख रहे हैं अभी हम मनोपरिज्ञानी में, दो सौ 225 के आगे पर अपगत वेदी मनोपरिज्ञानी 229 में नाम लिया, नाम कर्म जो बनते ही है उसको ही लिया, और हाँ वेदनी उसमें लिया ही नहीं, शेष भंग ओके समान है, इसमें ओघ में क्या लिया था? स्वामित्व में ओघ देखो, उसमें दोनों प्रकृतियों का अलग अलग लिखा होगा ना। हाँ, तो इसमें वेदिनी को नहीं लेना था, बराबर है। अभी हम बताते हैं, वे निकाल दिया था हमने। हाँ, घाती कर्म तो वो तो क्षपक के होते ही है ना, वो तो अभिनिबोधि ज्ञानी के समान। हाँ, वे सब क्षपक में होते हैं। अभी आपने कौन सा पेज नंबर दिखा था? 200। यानी वो ऊपर वे और नीचे वेदनीय और इतना शब्द निकाल देना। निकालना हिंदी में, मन पर्याय यानी जीवों में गोत्र कर्म के जगन्य अनुभव का इतना रखो, वेदनीय ने और ये दो शब्द निकाल देना। चलो रुकेंगे, जावानी के ज्ञान से सूझे नु पालो, सोवाणी मस्तक न हो सदा देत हो।